संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 20 जुलाई 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। अरब क्षेत्र को महामारी से उबरने के लिए खत्म करने होंगे संघर्ष और पाटनी होगी लैंगिक असमानता की खाई भी, कहा महासचिव ने। दक्षिण एशिया के अनेक देशों में भीषण बाढ़ का कहर, बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित, यूनिसेफ भी कर रहा है मदद, सुनिएगा एक इंटरव्यू। कोविड-19 ने बच्चों के आरंभिक जीवन को किया किस तरह प्रभावित और पुनर्बहाली उपायों में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की है दरकार। और कोविड-19 पर अपडेट के साथ साथ होंगे कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। अब समाचार विस्तार से। अरब देशों को वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने की कार्रवाई में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये महामारी लंबे समय से चले आ रहे हिंसक संघर्षों और पूरे क्षेत्र में ढांचागत खामियों को दूर करने का एक अवसर भी प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने महामारी से अरब क्षेत्र की बेहतर पुनर्बहाली के लिए गुरुवार को अपना नीति पत्र जारी करते हुए ये बात कही। UN प्रमुख ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी ने समाजों और अर्थव्यवस्था में हमारी दरारों, विच्छेदों और कमजोरियों को उजागर कर दिया है और अरब क्षेत्र भी इसका कोई अपवाद नहीं है। एक साथ मिलकर हम इस संकट को एक अवसर में तब्दील कर सकते हैं। ये क्षेत्र के लिए अच्छा होगा और हमारी दुनिया के लिए भी अच्छा रहेगा। महासचिव का कहना था,
With millions more pushed down the economic ladder, fully one quarter of the Arab population may live in poverty. In a region already rife with tensions and inequalities, this will have profound consequences on political and social stability.
करोड़ों लोग आर्थिक सीढ़ी पर नीचे की तरफ धकेल दिए गए हैं। इस वजह से करीब 1/4 अरब आबादी के गरीबी का शिकार होने की आशंका है। पहले से तनावों और विषमताओं से पीड़ित इस क्षेत्र में इसके राजनीतिक व सामाजिक स्थिरता के लिए गहरे नतीजे होंगे। वर्षों से चले आ रहे हिंसक संघर्षों और सामाजिक असंतोष के कारण मानवीय विकास की दिशा में प्रगति को झटका लगा है और कुछ समुदाय विशेष तौर पर ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनमें महिलाएं, शरणार्थी और घरेलू विस्थापित शामिल हैं। अरब क्षेत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा लैंगिक खाई है और मौजूदा हालात के कारण 7 लाख से ज्यादा महिलाएं अपने रोजगार खो सकती हैं। कोविड-19 के दौर में जरूरी है कि महिलाओं व लड़कियों के समान अधिकार और भागीदारी के संसाधनों में ज्यादा निवेश किया जाए। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने ध्यान दिलाया कि हिंसा में फंसे लोगों के लिए हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, खासतौर से 2.5 करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों व घरेलू विस्थापितों के लिए, जिन पर वायरस से संक्रमित होने का जोखिम ज्यादा है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में कई हफ्तों से हो रही मूसलाधार बारिश, बड़े पैमाने पर आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के कारण लाखों बच्चे और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों को तत्काल जीवन रक्षक सहायता प्रदान किए जाने की जरूरत है और मौजूदा हालात में अन्य लाखों बच्चों पर भी जोखिम मंडरा रहा है। दक्षिण एशिया में यूनिसेफ की क्षेत्रीय निदेशक जीन गॉफ ने बताया कि इस क्षेत्र में चरम मौसम से जनजीवन पर असर पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मानसून की भारी बारिश, बाढ़ और लगातार हो रहे भूस्खलन से बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में मानो तूफान आ गया है। कोविड-19 महामारी, पाबंदियों व अन्य रोकथाम उपायों के कारण जटिलताएं और बढ़ रही हैं, साथ ही प्रभावित इलाकों में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों की भी रफ्तार बढ़ रही है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अनेक लोग अब भी लापता हैं। बच्चों के डूब जाने की घटनाओं की लगातार खबरें मिल रही हैं। भारत के बिहार, असम, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 60 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें लगभग 24 लाख बच्चे हैं। इस बाढ़ के बच्चों पर असर के बारे में UN न्यूज हिंदी के अंशु शर्मा ने भारत में यूनिसेफ के आपदा जोखिम कम करने के मामलों के विशेषज्ञ सर्वजीत सहोटा से बातचीत की।
मेन इस वक्त जो एक्यूट सिचुएशन है वो असम में है, और असम में जैसे मैंने कहा 35 में से 30 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है। अगर हम देखें तो हमारा देश और खास करके आसाम जियोग्राफिक सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा रिमोटनेस है, तो लोग बाग अलग अलग जगह पे, कहीं 10 घर हैं, कहीं 100 घर हैं, तो इस तरीके से वाइड स्प्रेड है हैबिटेशन हमारी, हर जगह जाकर रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट चीज रिस्पॉन्स की होती है प्रिपेयर्डनेस, तो वो प्रिपेयर्डनेस मैंने पहले कहा कि कम्युनिटी लेवल प्रिपेयर्डनेस और फैमिली लेवल प्रिपेयर्डनेस इस साल वीक रह गई, पर पिछले कई सालों से सरकार की अच्छी प्रिपेयर्डनेस रही है मेरे हिसाब से असम में, हमने यूनिसेफ और ने काफी सारा काम सरकार के साथ पिछले सालों में किया है कि जो रिलीफ कैंप्स हैं उनको कैसे अच्छा किया जा सके, उनकी सारी असेसमेंट्स हुई हैं, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस हुई हैं, और इस साल तो उसको अडैप्ट भी किया कोविड कॉन्टेक्स्ट के लिए कि कोविड में रिलीफ कैंप्स कोविड कॉन्टेक्स्ट में कैसे अलग होंगे, उनमें क्या अलग होगा, तो वो सब हो रहा है। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि सब लोग रिलीफ कैंप में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सोशल इश्यूज होते हैं जिसके कारण, या जनरली लोग बाग इतनी दूर ट्रेवल नहीं कर पाते अपने घर से कि वो रिलीफ कैंप में आए, तो अक्सर लोग बाग अपने घर के आसपास ही किसी जो उनके पास प्लास्टिक शीट या कुछ होती हो, या एनजीओ या कोई दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार सपोर्ट कर रही है, तो इस तरीके से चल रहा है। हमारा मेन काम अभी भी रिलीफ कैंप्स के अराउंड ही है, रिलीफ कैंप्स में चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस, तो पिछले सालों में जितने पॉलिसी डिसीजंस हुए, जितने भी नॉर्म्स वगैरह बने हैं, उनमें चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस आ गई हैं, उसी में हेल्थ भी हेल्थ सेक्टर से भी रिस्पॉन्स उसी में है, रूटीन इम्यूनाइजेशन से लेके एजुकेशन, उनकी प्रोटेक्शन इश्यूज, तो काफी इम्प्रूवमेंट इस साइड में हुआ है कि रिलीफ कैंप्स एटलीस्ट बहुत ऑर्गेनाइज हो गए हैं।
लेकिन कोविड महामारी का समय है, तो इस समय मानवीय राहत का कार्य तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, तो कोविड के एहतियाती उपायों के साथ साथ तो इस काम को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है?
जैसे रिलीफ कैंप्स में पहले नॉर्म होता था कि पर पर्सन 3.5 स्क्वायर मीटर्स की स्पेस दी जाती थी या प्लानिंग के लिए यूज करी जाती थी, इस साल उसको डबल करके 7 किया गया था, और वाटर के प्रोविजन के लिए पहले 15 लीटर पर पर्सन होता था, इस साल 30 किया, उसको डबल किया है, तो इस क्योंकि हैंड वॉशिंग के लिए हमें चाहिए, तो डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन के लिए और लोगों का वाइटल पैरामीटर चेक करना, उसके लिए सारी सुविधा अब कैंप्स में बन गई है। कोविड अडेप्टेड जो रिस्पॉन्स रहा, इसकी तैयारी अप्रैल जून मई में कर ली गई थी और वो काफी काम आया है।
तो फिलहाल क्या स्थिति है, संयुक्त राष्ट्र की आपदा प्रबंधन टीम और विभिन्न यूएन एजेंसियां क्या इस समय काम में लगी हुई हैं वहां और इस आपात स्थिति से निपटने का प्रयास कर रही हैं?
हमारा ऑफिस है असम में, तो वहां हमारी टीम्स हैं जो काम करती हैं। हमारा मेन काम तो रिलीफ कैंप्स की डेमोंस्ट्रेशन है, इसके अलावा सरकार के हर लाइन डिपार्टमेंट के साथ जो रिस्पॉन्ड करते हैं उनके साथ हमारा टेक्निकल सपोर्ट रहता है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और अब तक 6,20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्यान दिलाया है कि संक्रमण से बचाव और फैलाव की रोकथाम में हर जगह आम लोग एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। यूएन एजेंसी के मुताबिक अतीत के सामान्य हालात में अब नहीं लौटा जा सकता। इस बीच संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व के निर्धनतम लोगों को अस्थायी रूप से बुनियादी आय मुहैया कराने से संक्रमण के मामलों में आ रही तेजी को कम किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में है और इससे अरबों लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने कहा कि लोग पुराने दिनों की तरह रोजमर्रा के जीवन में लौटना चाहते हैं और उनकी इस जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अतीत के सामान्य दिनों में फिलहाल नहीं लौटा जा सकता। महामारी से जो नए हालात पैदा हुए हैं उनके प्रति अभ्यस्त होने के लिए जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के रास्तों की तलाश की जाए। यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा संक्रमणों की पुष्टि महज 10 देशों में हुई है और इनमें भी लगभग आधे मामले अमेरिका, ब्राजील और भारत में हैं।
Although all countries have been affected, we continue to see intense transmission.
वैसे तो सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन कुछ देशों के समूह में तेजी से बीमारी का फैलना जारी है। लगभग 1 करोड़ मामले यानी विश्व भर में कुल संक्रमणों की 2/3 संख्या 10 देशों में है और इनमें भी आधे मामले महज 3 देशों से हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख गेब्रेयेसिस के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोहराया है कि कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े इन सभी फैसलों से लोगों, उनके परिजनों की जिंदगी और मौत का अंतर तय हो सकता है। इसलिए हर समय सतर्कता बरती जानी बेहद अहम है। उधर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने गुरुवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे या ठीक ऊपर रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी आय की गारंटी देने से संक्रमणों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। रिपोर्ट बताती है कि अस्थायी बुनियादी आय की व्यवस्था करने के लिए हर महीने $199 अरब की जरूरत होगी।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया अध्ययन दर्शाता है कि वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण विश्व भर में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को शुरुआती पढ़ाई लिखाई से वंचित होना पड़ा है। महामारी से बचाव के एहतियाती उपायों के मद्देनजर औपचारिक स्कूली शिक्षा की शुरुआत से ठीक पहले वाले साल यानी प्री स्कूल में बाल देखभाल संस्थानों और आरंभिक शिक्षा केंद्रों के बंद होने के कारण ये अवरोध पैदा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
इटली के फ्लोरेंस शहर में यूनिसेफ के शोध कार्यालय ने इस अध्ययन के नतीजे जारी किए हैं जिनमें बाल देखभाल संस्थानों और बचपन में आरंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों के हालात को समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही इन सुविधाओं के बंद होने से परिवारों पर पड़ने वाले असर का भी विश्लेषण किया गया है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरियटा फोर ने बताया कि COVID-19 महामारी के कारण शिक्षा में व्यवधान बच्चों को अपनी शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ संभव शुरुआत करने से रोक रहा है। बाल देखभाल और शुरुआती सालों में बाल शिक्षा एक ऐसी नींव का निर्माण करते हैं जिस पर बच्चों के विकास का हर पहलू टिका है। इस महामारी के कारण उस नींव पर गंभीर खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालाबंदी से अनेक अभिभावकों को बाल देखभाल और वैतनिक रोजगार के बीच संतुलन साधने में संघर्ष करना पड़ रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित हैं और उन्हीं पुरुषों की तुलना में औसतन 3 गुना ज्यादा समय देखरेख और घरेलू कामों में व्यतीत करना पड़ता है।
ऐसे में जबकि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निर्धारित संसाधन भी COVID-19 महामारी का मुकाबला करने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो मंगलवार को इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए 25 वर्ष पहले तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार किस तरह तेज की जाए। इस चर्चा में सरकारों के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी नेताओं, कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और शैक्षिक विशेषज्ञों ने वर्चुअल माध्यमों से शिरकत की। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
इस वर्चुअल बैठक का आयोजन यूएन महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने किया था जिसमें यूएन महिला संस्था की कार्यकारी निदेशक फुमजिले म्लाम्बो न्युगुका ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुपक्षवाद की ताकत का निवेश करें और महिलाओं के जीवन में लंबे समय से व्याप्त असमानताएं दूर करने के लिए क्रांतिकारी व सकारात्मक कार्रवाई से हासिल होने वाली उपलब्धियों के फायदों के लिए संकल्प दिखाएं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों को खास तौर से 1995 के बीजिंग कार्रवाई प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए ज्यादा मजबूत बहुपक्षवादी संकल्प की जरूरत के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सम्मेलन में प्रतिभागियों को एक दूसरे से सवाल पूछने का भी मौका मिला।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक जनरल डिबेट यानी आम चर्चा साल का सबसे अहम आयोजन होता है, लेकिन सितंबर में होने वाले 75वें सत्र के लिए विश्वव्यापी महामारी COVID-19 के कारण कुछ तब्दीलियां की गई हैं। नए कार्यक्रम के मुताबिक विश्व नेता न्यूयॉर्क आने के बजाय अपने वीडियो संदेशों के जरिए दुनिया से मुखातिब होंगे। अनेक देश COVID-19 महामारी से उपजे स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए महासभा के सत्र को बदले हुए कलेवर में वर्चुअली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।